ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் புஷ்பதன்ஸ் சிவ மஹிம ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி நிஷ்தானந்தஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
நாராயண் 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 நாராயண். பிரேம்புரி ஆசிரம் மே ஹம் சப் மாதாஜி கா ஸ்வாகத் கர்த்தே ஹேன். ஹம் சப் மில்கர் மாதாஜி கே ஸ்ரீ சரணோ மே வந்தனா கர்த்தே ஹேன், பிரணாம் கர்த்தே ஹேன். மாதாஜி ஹமே சிவ மஹிம்ன ஸ்தோத்ர பர் ப்ரவச்சன் கரேங்கி, ஔர் ஆஜ் சே லேகர் 28 ஃபர்வரி தக் மாதாஜி கா ப்ரவச்சன் யஹாம் சல்தா ரஹேகா. மே மாதாஜி சே பிரார்த்தனா கர்த்தா ஹூம், கிருபையா அப்னே ப்ரவச்சன் த்வாரா ஹமே அனுகிரஹித் கரே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண.
அத்ரன்னோபி வாதய மனஹ ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திஹி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரி ஓம். மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத் க்ருபா த்வமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்ச சாணூரமர்தனம் தேவகீ பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும். கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும். விஷய ஹே சிவ மஹிம்ன ஸ்தோத்ர. சிவ மஹிம்ன ஸ்தோத்ர கே ரச்சயிதா ஹே. जैसे मनुष्य योनि होती है, ज्यादा पुण्य कर्म के पुण्य फल के रूप में योनियां बदलती जाती है. देव योनि, तिरियंग योनि, प्रेत योनि होती है. ऐसे गंधर्व की योनि होती है. मनुष्य गंधर्व होते हैं और देव गंधर्व होते हैं. तैतरीय उपनिषद का जिससे अभ्यास होगा, वहां आनंद मीमांसा समय भी इसका इसकी बात आती है. ते ये शतम मनुष्य गंधर्वाणा मानंदा, ते ये शतम देव गंधर्वाणा मानंदा. तो ये गंधर्व राज जो है, वाणी की विद्या में, गान में, स्वर में, राग में अति कौशल्य होता है. तो परमात्मा ने विशेष रूप से वहां उनकी वाणी में प्रवेश करके ये विशेष कौशल्य क्यों दिया है? क्योंकि उनकी गुण का, उनके कथन का, परमात्मा के रूप का आप स्मरण कीजिए, गान कीजिए, चिंतन कीजिए. प्रेम से उसे पुकारने के लिए अनेक विध राग रागिनियां परमात्मा ने बनाई है. अगर परमात्मा ने गला अच्छा दिया है और उनके राग गाने में प्रमाद किया गया, या आपके पास मुख है, वाणी है, दृष्टि है, कान है, और फिर भी आप परमात्मा का नाम स्मरण चिंतन मनन नहीं करते हैं, तो उसका फल क्या होता है, थोड़ी वो भी बात ये स्तोत्र से हम जान सकते हैं. और ये जानने के बाद कहीं हमसे ये गलती न हो जाए, उसकी भी बात, कोई भी वेदांत का स्तोत्र है वो मात्र अपने लिए ही बात नहीं करते. वेदांत के जो भी कुछ स्तोत्र है या पाठ है या स्तुति है या शास्त्र के, कोई भी आप उपनिषद ले लीजिए, कोई भी अध्याय ले लीजिए, वहां दो बातें मिलेगी, एक वक्ता और एक श्रोता. एक मुख्य जो है, अथवा तो वक्ता और श्रोता के रूप में कोई अध्याय न होगा तो क्या होगा? स्तुति में क्या होता है? एक उपास्य देव, एक आराध्य देव और एक आराधना करने वाला यानी के उपासक. और ये उपासक और आराध्य देव के बीच में जो घटित होता है वो उपासना, वो आराधना। तो हम कौन है? हम सब, तो हम सब उपासक है, पर हमारे उपास्य देव कौन है? हमें उपासना तो किसी की करनी ही है, नहीं तो यहां हम आए ही नहीं होते। हमें कोई एक तत्व को तो जानना ही है जिसने ये आकाश से लेकर हमें बनाया। या तो हम आश्चर्य से यहां उपस्थित हुए हैं, या तो संसार में बहुत सारी प्रतिकूलता है और यहां कुछ वो प्रतिकूलता से थोड़ी देर के लिए भी हमें अगर आनंद प्राप्त होता है इसीलिए हम आए हैं। पर ये आनंद प्राप्त जो होता है, हमारी प्रतिकूलता थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती है, वो कौन से उपास्य देव है? ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर? ये वेद के, ऋग्वेद के मंत्र है। ये सृष्टि निर्माता कौन है? सृष्टि किसने बनाई? ये किसके ऊपर ये सब आधार? ये आकाश को भी आधार देने वाला कौन है? आकाश है तो आकाश को बनाने वाला कौन है? कोई भी चीज अगर है ऐसा आप बता सकते हैं कि आकाश इज, अस्थि है, धरती है, टेबल है, तो है जिसमें है लग गया उसका कर्ता तो कोई होगा ही। तो वो कर्ता कौन है? मेरा उपास्य देव कौन है? और ये उपास्य देव के प्रति किस किस चीज से, कौन से रास्ते से हम गमन कर सकते हैं? उसका एक जो रास्ता है भक्ति का रास्ता है, उपासना का रास्ता है, आराधना का रास्ता है। तो ये आराधना का जो रास्ता है यहां उसकी रजूआत की गई है। तो इनके रचयिता जो है वे गंधर्व राज है। गंधर्व राज यानी गंधर्वों में भी उत्कृष्ट और श्रेष्ठ है। नाम है पुष्प दंत। काशी नरेश के उद्यान में बात कुछ ऐसी है। देखिए ये रचना क्यों हुई शिव महिमन की? और आप तो यहां बरसों से वेदांत के अभ्यासी है, आपको पता होगा हरिद्वार ऋषिकेश कहीं भी परंपरा के आश्रम में आप चले जाइए, रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है और रोज शाम को कौन सा पाठ किया जाता है? तो यही शिव महिमन का पाठ किया जाता है कि हे भगवान, पूरे दिन में अगर ये शरीर मन बुद्धि का संघात दिया है मात्र परमात्मा को जानने के लिए, ये बात बराबर समझ लीजिए। हमने गलती से ऐसा मान लिया हो कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना ही है, ये मेरा संसार है, वो बात अलग है। पर ये सब करने के बाद भी आपने अपना आपका जो स्रोत है, जो परमात्मा है, उसके कारण को जानने की चेष्टा नहीं की, तो सब कोशिश, सब कर्तव्य, सब कर्म क्या है? सब व्यर्थ हो जाते हैं। तो बात कुछ ऐसी होती है कि काशी नरेश राजा, उनके उद्यान में परमात्मा की पूजा के लिए बहुत ही सुंदर उपवन का निर्माण किया गया था और अनेक प्रकार के वहां पुष्प थे, अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प परमात्मा की पूजा के लिए वहां उगाए जाते हैं। अब ये पुष्पदंत गंधर्व राज जो है उनको एक विशेष विद्या प्राप्त हुई थी और वो ये हुई थी कि वो जब चाहे तब अंतर्ध्यान हो सकते थे। अंतर्ध्यान यानी कि हो सकते थे पर दिखाई नहीं देते थे, अदृश्य रूप से विचरण कर सकते थे और कर्म भी कर सकते थे। ऐसी एक विशेष विद्या परमात्मा के अनुग्रह से ही उनको प्राप्त हुई थी। पर परमात्मा के अनुग्रह से प्राप्त हुई विद्या का जब उपयोग होता है तो क्या होता है, सदुपयोग होता है तो क्या होता है, और दुरुपयोग होता है तो क्या होता है, ये भी इस स्तोत्र से हमें बात सीखनी है। और ऐसी ही कुछ विद्या हमें भी दी है। देखे ये बोल सकते हैं, वो क्या चमत्कार कम नहीं है? एक मुख बनाया है उसमें से वाणी निकल रही है और आप सोच रहे हैं वो आप बोल सकते हैं, ये क्या चमत्कार नहीं है? आप जो चाहे वो सुन सकते हैं, जहां चाहे चल सकते हैं, पैर से जा सकते हैं, गति कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो संगात है उसका अगर आपने मात्र उपयोग ही किया, उपयोग यानी चल के आपके शरीर को मन को बुद्धि को जहां सांत्वन मिले अच्छा लगे वहां आप गए उसका उपयोग किया उसको खिलाया पिलाया और सो गए। किसी का कुछ अच्छा भी नहीं किया और बिगाड़ा भी नहीं, ये मात्र उपयोग किया आपने। पर यही पैर से गलत जगह पर गए, यही आंख से गलत देखा, यही कान से गलत सुना, यही जिह्वा से गलत खाया, गलत बोले, हाँ असत्य वाणी का वाणी वचन बोले, तो ये दुरुपयोग हुआ। और वो दुरुपयोग से क्या होता है, वो परमात्मा के प्रति निष्ठा का भाव जो है वो आपने कम कर दिया, ये दुरुपयोग किया और उसका फल तो मिलता ही है। उसका फल क्या मिलता है हमारे जीवन में, तो बोले अशांत, सब होने के बावजूद भी अशांति, सब कुछ होता है और शांति होती है, तो समझ लेना कि ये शरीर मन बुद्धि के संघात का कहीं दुरुपयोग हुआ है। सब कुछ होते हुए भी अप्रसन्नता, सब कुछ होते हुए भी अपूर्णता का भाव, तो ये सब दुरुपयोग। और सदुपयोग क्या है, तो मात्र परमात्मा को जानने की एक थोड़ी सी भी आपने चेष्टा की ना, और कुछ नहीं, कोई मंदिर में जाके कोई तीर्थ स्थल में जाके दर्शन भी कर लिया, एक हाथ भी ऐसे आपके जुड़ गए तो बहुत हो गया, इतना ही चाहिए परमात्मा को, बाकी का वो संभाल लेते हैं। ये क्या है, आप प्लेन में बैठते हैं फिर क्या करते हैं, टिकट आपने ली है सब कुछ किया है पर प्लेन चलाना पड़ता है आपको, प्लेन चलाना नहीं पड़ता है आपको, क्या करना है, टिकट लेके सिर्फ बैठने का कर्तव्य प्रयत्न करना है। प्लेन तो उड़ाने वाला और उसमें बहुत कष्ट है, अगर आप भीतर जाएंगे, ये जो कॉकपिट जो होता है, वो जो प्लेन की जो कैबिन होती है जहां पायलट बैठा करते हैं, वो कैबिन बराबर बंद रखी जाती है, वो आपको दिखाई नहीं जाती, अगर वो आप देख लेना तो प्लेन से उतर जाएंगे कि इतने सारे बटन है, इतनी सारी स्विचेस है, कोई एक गलती से कुछ दबा दिया या ये भूल गया या ये पायलट सो गए तो क्या होगा मेरा, ऐसा सोच के आप टिकट के पैसे लिए बिना उतर जाते कि भाई ये आपको भेंट दे दिया, इसमें हम ट्रैवल नहीं कर सकते। देखिए ये संघात, ये पैकेट इतना बराबर दे दिया है परमात्मा ने, अगर उसकी आंतरिक विधियां आप देखने जाए तो दिमाग काम नहीं करेगा। और इसका अगर सदुपयोग किया वो परमात्मा को जानने के लिए, कहने का तात्पर्य क्या है कि आप सिर्फ थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए, तो जैसे वो पायलट ही टेक्स ओवर एवरीथिंग, आप थोड़ा प्रयत्न उनको जानने का कीजिए, इच्छा भी कीजिए, परमात्मा कोई न कोई स्वरूप से आपके संस्कार के मुताबिक, आपके कर्म के मुताबिक, आपके आदतों के मुताबिक परमात्मा तत्त्व रूप लेकर यहाँ विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए 33 करोड़ देवता क्यों कहा गया है, 33 करोड़ वृत्तियां है, 33 करोड़ भक्ति की वृत्तियां है, जिससे भक्त या मनुष्य परमात्मा को पुकारता है। और परमात्मा को जिस रूप में शुद्ध भाव से सत्व गुण जब चल रहा है तब पुकारा। देखिए कौन सी बात का संयोजन होना चाहिए, एक तो सत्व गुण है, परमात्मा के लिए प्यास है और पुकारा, तो क्या हो गया, वो आपका सत्वगुण आपके कर्म फल के मुताबिक का, और वो परमात्मा की प्यास लगी तो एक रूप खड़ा हो गया, तो दूसरे को भी लगी, तीसरे को भी लगी, ऐसे ये जो अनेक देव जो दिख रहे हैं वो हमारी ही वृत्ति के कारण परमात्मा ने अपने आप को अभिव्यक्त किया है। तो ये सदुपयोग अगर किया तो ही ये मनुष्य जन्म का साफल्य है, और किसी में ये साफल्य नहीं है। तो यहाँ काशी नरेश के उद्यान में जो पुष्प उगाए जाते थे, ये गंधर्व राज को हुआ कि ये जो पुष्प है, हालांकि ये पुष्प वो परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की पूजा के लिए ही लेना चाहते थे, पर रास्ता गलत था। रास्ता कौन सा गलत था, तो उनकी जो अंतर्ध्यान होने की जो शक्ति उन्हें प्राप्त हुई थी उनका उन्होंने दुरुपयोग किया, और अदृश्य रूप में रोज काशी नरेश के बागान में जाके पुष्प को ले लेते थे और चले जाते थे। ऐसा बहुत समय से चलता रहा, तो काशी नरेश राजा को हुआ कि ये गलत है, पुष्प पूजा के लिए लिए जाते हैं तो मैं तो ना नहीं बोलने वाला, मैं मेरे घर में चढ़ाऊं या कोई अपने देव को जाके चढ़ाए, सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, ये तो परमात्मा को ही पहुंचने वाला है, पर पूछ लिया होगा तो अच्छा होता, ये कौन ले रहा है पुष्प पता भी नहीं लगता। तो बहुत सोचने के बाद उन्हें एक विचार आया कि शिव निर्माल्य, शिव निर्माल्य यानी शिव को चढ़ाए गए पुष्प या बिल्व पत्र है, वो जो बिल्व पत्र है वो शिव निर्माल्य जो है वो पूरे बागान में वो बिछा देते हैं, और उन्हें विश्वास था कि ये शिव निर्माल्य के ऊपर से तो कोई जा नहीं सकता, और गलती से अगर चला भी गया तो उनके पास जो अंतर ध्यान होने की शक्ति या विद्या या कोई भी प्रकार की विद्या है वो अपने आप चली जाएगी, और वो ये जो कोई ले रहा है ये पुष्प की चोरी हो रही है वो मैं जान सकूंगा कि ये कौन है। देखिए, हम कई बार ये एक एक्सक्यूज ले लेते हैं कि भाई मैं गलत तो कर रहा हूं पर परमात्मा के लिए ही ना, वो भी चलता नहीं है। अगर परमात्मा के लिए ही करना है तो गलत क्यों करना, परमात्मा के लिए आप करेंगे तो कुछ भी करने की शक्ति और क्षमता आप में आ ही जाएगी। उनके लिए तो गलत करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो उलट सुलट कर देते हैं, गलत को भी सही बनाने वाले परमात्मा है, आप डरते क्यों हैं? भाई मेरा उद्देश्य तो भक्ति का ही था, मेरा उद्देश्य तो प्रवचन सुनने का ही था, थोड़ा झूठ बोल दिया थोड़ा गलत किया तो क्या मिलता तो वही है ना। अगर गलत होता तो काशी नरेश जी को विचार नहीं आता कि मैं शिव निर्माल्य डाल दूं और इन्हें पकड़ूं, ये सही ही होता था और ये स्तोत्र की रचना भी नहीं होती थी। देखिए, आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? अगर आप बोल रहे हैं कि मैं भक्त हूं, मैं वेदांत का श्रोता हूं, मैं शिष्य हूं, आप रिप्रेजेंट वो परमात्मा को कर रहे हैं, कोई गुरु को कर रहे हैं, तो नाम बिगड़ेगा किसका? हाँ, अगर आप गलत करके भी वेदांत में श्रवण में आए, गलत करके भी सत्संग किया तो नाम किसका बिगड़ेगा कि अरे भाई आपके भगवान ऐसे हैं, आपके गुरु ऐसे हैं कि ये भक्तों को झूठ बोलना पड़ता है आपको नाम लेने के लिए? तो जिसका नाम लेने के लिए झूठ बोलना पड़ता है वो भी झूठा ही होगा। पर परमात्मा कैसा है? सत्यम परम धीमहि, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये परमात्मा तो सत्य स्वरूप है, डरते क्यों हो? और इसीलिए ज्ञानियों की स्तुति करने के लिए ही तैतरीय उपनिषद ने उद्धृत किया है, न बिभेति कुतश्च नेति। हाँ, वो परमात्मा को जान लेने के बाद वो डरता नहीं है किसी से। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि असत्य नहीं करता है। हाँ, असत्य करके नहीं डरना वो अलग लोग हैं समाज में, वो हम देखते हैं रोज पेपर्स में पढ़ते हैं कि असत्य करके नहीं डरते, पर ऐसी अभयता हमारे शास्त्र में नहीं की गई है। सत्य करना और नहीं डरना, ये कुछ खुमारी की बात हुई और ये परमात्मा की प्राप्ति की बात है। परमात्मा हमारी कसौटी यहीं से शुरू करते हैं कि सत्य करना, मेरे लिए कुछ करने के लिए तुझे झूठा बोलना पड़े तो ये बंद, परमात्मा दरवाजा ही बंद कर देते हैं। मेरे लिए, मुझे जानने के लिए आप निकले हैं तो सत्य का सामना करो, समाज का सामना करो। इतनी हिम्मत तुम्हारे में है तो प्लेन चलाने वाला मैं हूं, पायलट हूं, इतनी ही हिम्मत के सत्य के सत्य न पंथा विततो ब्रह्मयान, ये सत्यमेव जयते नान्द्रुतम, ये उपनिषद वाक्य है। हा? तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक सत्य की थी तो जरूरत है ही, तो ही वो परमार्थ का जो सत्य है वो हमारे लिए खुद को अनावृत करेगा। असत्य का मार्ग लिया तो अनावरण किसका होगा? असत्य का अनावरण होगा। तो ये शिव निर्माल्य के ऊपर से वो तो आए अदृश्य रूप में, गंधर्वराज शिव निर्माल्य को भूल से उन्होंने पार कर लिया। जैसे ही शिव निर्माल्य को पार कर लिया, बिल्व पत्र के ऊपर से वो गए, उड़ गए, तो क्या हुआ? तो उनकी जो तिरोभूत होने की शक्ति थी वो चली गई और तुरंत वो शरीर के गंधर्व के आकार में आ गए। ऐसे आ जाने पर वो पकड़े गए। ये गलत उपयोग करने का, फूल ले रहे थे परमात्मा के लिए ही तो सत्य बोल के भी ले सकते थे, इतना हम समझ जाएंगे तो भी ठीक है। परमार्थ को बहाना मत बनाइए, भगवान को बहाना मत बनाइए गलत करने के लिए। इतना जानिए कि वो परम स्वराज राजाधिराज वो परमात्मा है और उनको जानने के लिए आप निकले हैं, आप उनके बनने के लिए निकले हैं, तो फिर डर कैसा? हाँ, एक बार हृदय खोल दीजिए, एक बार सत्य के रास्ते पे चले जाइए तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप जिसको जानने के लिए जा रहे हैं वो परम सत्य है और अब तक नहीं मिला उसका कारण ही है कि उनको जानने के भ्रम में हम गलत करते हैं, गलत कारण दे रहे हैं कि भाई ये मैं झूठा कर रहा हूं क्योंकि मैं परमात्मा के रास्ते पे जाना चाहता हूं। ये दो चीज बन नहीं सकती। हिम्मत करके एक बार सत्यनिष्ठ हो जाइए, जैसे मीराबाई सत्यनिष्ठ, कृष्ण की भक्ति है तो है, मुझे मूर्ति को नहीं छोड़ा। जब शादी करके आए, अपने ससुराल में आए, तो भी कृष्ण भगवान की मूर्ति ऐसी ही रखी थी, पास ही रखी थी और उनके साथ ही वो रहते थे। दंभ नहीं किया कि नहीं मैं कोई भगवान में नहीं मानती और भीतर से पूजा किया थी, नहीं, हिम्मत है, साथ में ही रखा और परिणाम आपको पता है। तुकाराम, नरसिंह मेहता, ये सब साधुओं के, सब संतों के जीवन देखिए, सत्य को नहीं छोड़ा, परमात्मा को नहीं छोड़ा और हमें मंदिर में जाने से भी शर्म लगती है, पैर छूने में भी शर्म लगती है, अनजाने में भी हम देख लेते हैं कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा जिससे मुझे शर्माना है या सिर छुपाना है। और मॉडर्न, हम कौन से किस आदमी को मॉडर्न समझते हैं जो ऐसा कुछ नहीं करता, वो मॉडर्न है। और हमें वो भी चाहिए और ये भी चाहिए, ये दोनों नहीं हो सकते। परमात्मा के पास जाने के लिए कोई भी शर्म, संकोच, कोई भी प्रकार का अंतस उसके साथ मत रखिए। क्यों? तैतरीय उपनिषद ने भी कहा है, यदा ये वैश्य एतस्मिन् उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम् भवति। क्या होगा? कोई अंतर रखा, अंतर यानी परमात्मा के बारे में उनका बहाना बना के भी झूठ किया ना, तो भी वो अंतर हो गया। अंतर यानी उपनिषद जो अंतर की बात कर रहे हैं वो क्या है कि वो परमात्मा निज अंतर गुहा में ही है, वो परमात्मा मैं ही हूं, ऐसा न समझते हुए वो परमात्मा मेरे बाहर है, ऐसा अंतर रखा। पर वो अंतर तो बहुत दूर की बात रही, हम तो असत्य से ही अंतर शुरू कर देते हैं, परमात्मा से अंतस रखते हैं। तो ऐसे अंतर रखने वाले को क्या होता है? अत तस्य भयम् भवति, ये शास्त्र ने कह दिया। हजार बार, लाख बार मूर्ति को हमने प्रणाम किया तो भी भय से मुक्त हुए हम? भय यानी भीतर से एक डर बना रहता है, एक खौफ बना रहता है। हम ऐसे ही है, दिखता नहीं है, ये ट्रेमरिंग दिखता नहीं है, पर वी आर ट्रेमरिंग फ्रॉम विद इन, ये डर खड़ा ही हुआ है। अंततः सबसे आप डरना बंद कर देंगे, अपने आप से डर लगता है, अपने आप के विचार ऊपर भी हमें कोई विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि असत्य का सहारा है। खाद्य जो है, पानी जो है, वो असत्य दिया है, जानने निकले हैं सत्य को, तो ये भय होगा। और अंतिम भय है मृत्यु का, और उससे भी बड़ा भय है अगली योनि का, जन्म का। जन्म के भय के तो बारे में हमने सोचा ही नहीं, अब तक हम मृत्यु के बारे में भयान्वित हो रहे थे, आपने हमारा भय बढ़ा दिया, अब अगले जन्म की भी चिंता करवाई। अब तक तो मृत्यु तक ही हमारा भय सीमित था, पर अगले जन्म की ही चिंता करनी चाहिए। और उसकी व्यवस्था के लिए ये पुनर्जन्म, पुनर्मरण, ये व्यवस्था से छूटने के लिए ही ये सत्संग करना चाहिए, पर सत्य का पंथ लेना। तो गंधर्व राज पकड़े गए। अब क्या हुआ? देखिए, कर्म तो गलत हुआ, गलती से हुआ, पर परिणाम क्या आया? परिणाम तो अच्छा ही आया। क्यों? क्योंकि परमात्मा प्रीत्यर्थ था, इसलिए। तो परिणाम क्या हुआ? गंधर्व राज पुष्पदंत जी जो थे, उन्हें बहुत ही पछतावा हुआ, पर भीतर से वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो भी शिव भक्त ही थे। ये जो पुष्प ले जाते थे वो शिव जी के लिए ही ले जाते थे, पर उनके मन में ये शिवजी कौन है, शिवजी की महिमा क्या है, वो मन में अंदर अंदर विचार आते रहते थे, पर वो अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे। क्यों अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे? उन्हें डर लग रहा था कि ब्रह्मा जी भी, जिनकी महिमा का वर्णन करने में अशक्त रह गए, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, वो कमल में नीचे जा रहे हैं, उनका अंतिम अंत जो है, शुरुआत जो है, स्रोत जो है, वो ढूंढने के लिए गए, करोड़ों वर्षों तक गए, और ब्रह्मा जी ऐसे ही अपने स्रोत को, कारण को बिना जाने उन्हें वापस आ जाना पड़ा। क्या हुआ, वो उनके कारण को नहीं जान सके। तो पुष्पदंत जी को मन में हो रहा था कि ये जो मेरा कारण है, जो परमात्मा है, उसे ब्रह्मा जी भी अगर नहीं जान सके तो मैं कैसे जान सकूं। पर उन्हें ऐसा था कि हे परमात्मा, मैं आपको कितना जानता हूं वो आप नहीं जब तक जानेंगे, तब तक मैं जहां हूं वहां से मेरी साधना आगे कैसे बढ़ेगी। और ये हम सब साधक, सब शिष्य का कर्तव्य है कि आपकी साधना जहां तक हुई हो, आप जहां तक आगे विचार में गए हैं, समय समय पर आपके गुरुजनों को, आपके संतों को बताते रहिए कि भाई यहां तक आए हैं, यहां अब बंद हो गया है, अब आगे क्या करने का। हाँ, वो आप बताते रहिए, अभिव्यक्त हो जाइए, उनमें शर्म, उसमें असत्य नहीं रख रहे। ये जो असत्य की बात आई ना, उसमें असत्य यानी क्या कि मुझे तो सब आ गया है, सब बराबर है, गुरुजी आप जो कुछ बोलते हैं मुझे सब कुछ समझ में आता है, आप जो भी विषय पे बोलेंगे आई नो एवरीथिंग, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। गुरु को भी पता है कि इसको कितना समझ में आया, क्योंकि जिसको खरेखर समझ में आता है वो बोलता नहीं है कि सब समझ में आ गया। तो ये जो मुझे समझ में आ गया वो बोलना ही आपका सर्टिफिकेट दे देता है। तो करना क्या है कि जो भी आपके मन में है वो अभिव्यक्त परमात्मा के प्रति, तो अभिव्यक्त आपको करना ही है। पुष्पदंत जो गंधर्व राज थे, उन्हें मन में ऐसा हो रहा था हमेशा कि मैं कहां तक आया हूं, मैं कहां तक वो महिमा को प्राप्त हुआ हूं, ये अगर मेरे परमात्मा नहीं जानेंगे तो मैं जहां हूं परमात्मा का पार तो नहीं पाया जा सकता। तो मैं जहां हूं वो परमात्मा को मालूम पड़े तो ही उनका अंतिम छोर है, वहां तक जाने की चेष्टा मैं कर सकता हूं। और वो यही राह देखते थे कि ऐसा क्या हो जाए कि परमात्मा की स्तुति मैं कर सकूं। क्योंकि देखिए, ये ऐसा उनको क्यों होने लगा, हमें क्यों ऐसा नहीं होता है कि स्तोत्र की रचना करें। देखिए, सबके स्वभाव के मुताबिक है होता है, रुचि नाम वैचित्र्यात्, उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने ही कहा है कि सबकी अपनी अपनी रुचि अलग होती है, कर्म के संस्कार के अनुसार, पाप पुण्य के जो कर्म के फल है उसके अनुसार संस्कार है, रुचि है, वो सबकी अलग अलग होती है। और वो रुचि के अनुसार ये कौन थे, तो बोले गंधर्व राज थे। और गंधर्व राज थे इसीलिए शब्द कला में निपुण थे, साहित्य कला में निपुण थे, गान कला में निपुण थे। शब्द उनके लिए अशक्य बात नहीं थी, बहुत सरल बात थी। हमें कोई स्तोत्र की रचना अगर की करने का कुछ बोला जाए तो हम क्या करेंगे, थोड़ी तकलीफ होगी। पर ये गंधर्व राज थे इसलिए वो बात उनके लिए बहुत सरल थी। इसीलिए हमेशा याद रखना, एक और बात ध्यान रखिए कि आपका जो स्वभाव है, आपकी जो आदतें हैं, आपके जो गुण हैं, उसी के मुताबिक परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करना, अनुकरण नहीं करना। श्रवण से परमात्मा के स्वभाव को जान लीजिए कि वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, आपके भीतर ही वो है, जब भी मिलेगा अस्ति इति एव उपलब्धव्यः। हाँ, कठोपनिषद में बता ही दिया है कि जैसे भी जब भी मिलेगा अस्ति प्रत्यय से परमात्मा है, अहम वृत्ति से ही मिलेगा, ये उसका एंड रिजल्ट है। पर अगर आपके संस्कार सिर्फ बौद्धिक है, आपको मैं कहूं कि लिफ्ट नहीं चल रही है, आप यहां से नीचे पैदल चले जाइए और नीचे आप खड़े रहे और मेरे साथ बात करने की भी आपकी शक्ति नहीं है, इतने आप कमजोर हैं, आप कोई भी प्रकार के नहीं, कोई श्रम ही नहीं ले सकते, आप बोले कि आप मुझे